ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय तीसरा और श्लोक संख्या 9 और 10, यहाँ 10वां श्लोक उपस्थित है, 9वां सुन लेते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से बाहर की लीलाएं का वर्णन कर रहे हैं और उसमें नौवें श्लोक में बताया गया है, तासु अपत्यानि अजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः एकस्याम दश दश प्रकृते विभूषया। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने 16,108 रानियां की थी, उनमें से हरेक से अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। प्रभुपाद जी अन्य जगह कहते हैं कि ये सारी संतानें यादव कुल कहलाने लगी और यादवों का संहार भी भगवान ने अपने ही इच्छा से किया, क्योंकि आत्मतुल्यानी यानी कि उनके समान ही सारे ऐश्वर्य युक्त सारी संतानें थी और इनके जाने के बाद पृथ्वी पर इतना बोझ बढ़ जाता तो भगवान ने अपने अंतर्ध्यान होने से पहले ये बताया, निश्चित किया कि उनको पहले उनके यथास्थान में उनको भेज देते हैं। तो उनके ही बेटों द्वारा सांब जिसमें निमित्त बना है और सांब के और अन्य वरिष्ठ बच्चों ने ऋषियों का अपमान किया। भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्त को निमित्त बनने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, भक्ति में तो निमित्त बनना ही पड़ता है। तो ये तत्व अभी हम 10वें श्लोक में पढ़ेंगे। काल माघध शाल्व आदिन अनिकैहि रुन्धतः पुरम अजनिघ्नत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसा तेजः आदिशत् कालमाधक मागद शाल्वादी अनिकैरन्धतः पुरम् अजिघनस्त्यं दिव्यम् स्वपुंसां तेजादिशत् कालमागद शाल्वादीन् अनिकैरन्धतः पुरम् अजिघनस्त्यं दिव्यम् स्वपुंसां तेजादिशत् कालमागद शाल्वादीन् अनिकैरन्धतः पुरम् अजिघनस्त्यं दिव्यम् स्वपुंसां तेजमादिशत् काल यवन मागध मगध का राजा जरासंध, शाल्व शाल्व राजा, आदिन इत्यादि अनेक सैनिकों से रुंधतः घिरा हुआ पुरम मथुरा नगर अजी घनत मार डाला, स्वयं स्वयं दिव्यां दिव्य स्वपुंसाम अपने ही लोगों को तेज तेज आदिशत प्रकट किया। अनुवाद तात्पर्य श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, काल यवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सब को स्वयं नहीं मारा। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद कहते हैं कि कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी काल यवन जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई थी, तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इसी तरह वे रणछोड़ कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते। काल यवन तथा मगधराज का वध क्रमशः मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के अभिकर्ता यानी कि एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम या तेज को प्रदर्शित करना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, लेकिन अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उससे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। ओम ज्ञान तिविरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणार्गुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काल मागध शाल्वादिन कई ही रंधत पुराण अजी घनतस्तस्त्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत। कालयवन मगध के राजा तथा शालों ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से गिर गई तब तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। भक्ति की प्रसिद्धि, भगवान के कार्य में निमित्त बनने के लिए होती है, तभी प्रकट होती है भक्ति की शक्ति, अन्यथा नहीं प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीला में जिन जिनों ने योगदान दिया उन सभी भक्तों की सराहना हमारे लिए बहुत आदर्श बन जाती है। इसीलिए ऐसे भक्तों के कदमों में चलना, इनका पदचिन्ह को अनुसरण करना, भक्ति तत्व, धर्म का तत्व इत्यादि निहित है। कोई बड़ी पंडिताय से ये तत्व नहीं समझा जाता। वेदों में कितने भी पटु हैं, क्या है, उन चीजों से नहीं समझा जाता। महाभारत में उसकी स्पष्टता हुई, युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज थे तो इनको सब विदित होता है। जब जब पांडवों पर एक कौरवों के ईर्ष्या का जो जो दुस्साहस हुआ उसमें युधिष्ठिर महाराज हमेशा अपने आप को निमित्त ही समझते थे और भगवान की प्रीति के लिए उन्होंने जुआ खेलने की भी चुनौती दे सके। जबकि अर्जुन और भीम में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, वो काफी सहज भाव से आर्ग्यूमेंट करने लगते थे, दलीलबाजी करते थे, लेकिन युधिष्ठिर हमेशा शांत रहे। तो वो हमेशा अपनी भक्त की स्थिति बनाए रखे उन्होंने। अर्जुन को भी जब ये सैन्य की दौर संभालनी पड़ी, भगवान ने उनको सारथी बनना पहले से ही पसंद किया, वो इनकी अहेतु की कृपा। लेकिन अर्जुन यदि अपनी मनमानी करता, आर्ग्यूमेंट दलीलबाजी तो वही कर रहा था कि मैं लड़ना नहीं चाहता, यदि लड़ना नहीं चाहते तो क्या सारथी पद भी आगे निभा सकते थे भगवान? भगवान की योजना क्या है, भगवान क्यों सारथी बनना चाहते हैं, उसके पीछे कितना बड़ा रहस्य निकला। यहां श्री प्रभुपाद ये रहस्य को स्फोट करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं कि देखो भक्ति मामूली नहीं, जो भगवान द्वारा प्रदत्त यश में वो सहयोग नहीं देता। तो ऐसे ईर्ष्यालु लोग बिना भगवान अपने आप को ही ऐसा यश प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं। जीव भगवान का अंश है, वो यश के अधिकारी होते हैं, लेकिन चोरी से तो यश नहीं ले सकते। इन लोगों का यश ज्यादा देर टिकता नहीं। यश की भावना तो सब में है, लेकिन यश कैसे प्राप्त करना उसका रहस्य यहां खुला हो जाता है। अर्जुन की ये सारी समस्या इतनी दलील करते हुए भी अपने आप वो मिटा नहीं सका। वो शायद ये चाहता होगा कि मैं न लड़कर यानी इनकी परेशानी मिटा दूं, पर उसे क्या सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है? उसने देखा था ये तो पहले से हम लोग पैदा हुए तब से ही हमारे पीछे पड़े हैं। हाँ, हमारी उपस्थिति का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। लड़ाई में भी देखो वही कौरवों की सारी योजना रही। अश्वत्थामा ने पांडवों की सारी भावी प्रजा जो पांच सुप्त बेटों की भी हत्या निर्मम हत्या कर दी, उनका वारस भी कोई नहीं रहने देना चाहे। और एक था परीक्षित तो उसके पीछे भी ब्रह्मास्त्र जैसा बड़ा शस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, तो कितना जघन्य काम था। यानी कि इन लोगों की हस्ती मिटाना नहीं चाहते, मिटा के रहेंगे ऐसी उन्होंने ठान ली, ऐसी ही ठान ली। तो क्या इनके विपरीत भगवान की क्या इच्छा थी वो लोग को कैसे पता चलेगा? तो भगवान की क्या इच्छा है उसका धीरे धीरे अर्जुन को जब भगवान को उपदेश देते हैं उसमें स्पष्ट होता है। भगवद गीता में भगवान की इच्छा क्या है वो स्पष्ट होती है और भक्त उसी ढंग से वो निर्णय अपना लेता है। आर्ग्यूमेंट में भगवान भी कमजोर थोड़े हैं, लेकिन व्यक्ति की समझ किस ढंग से अनुरूप होनी चाहिए उसके लिए मार्गदर्शन आवश्यक है। मार्गदर्शन झूठा नहीं होना चाहिए, वो सत्य का परिचय कराना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम देखेंगे कि यहां इस श्लोक में भगवान ने देखो अपने भक्तों को यश देने के लिए स्वयं रणछोड़ बने। रण छोड़ना एक तरफ अर्जुन को कहते हैं कि तू रण छोड़ के भाग जाएगा तो ये सारे तेरी बेइज्जती करेंगे, और बेइज्जती मरने से भी ज्यादा दुखतर होती है। मरना तो दुखमय है ही, लेकिन बेइज्जती में जीना सबसे ज्यादा मरने से भी ज्यादा दुखमय होती है। तो उनको रण छोड़ने की मना कर दे और यहां स्वयं रण छोड़ देते हैं। ये कोई विरोधाभास है क्या? तो बेइज्जती से बचाने के लिए ही तो अर्जुन को युद्ध करवाया, नहीं बेइज्जती से बचाने के लिए नहीं। हम देखेंगे कि भगवान किस ढंग से अर्जुन को कहते हैं कि देखो अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। बेइज्जती यानी कि अकीर्ति, तेरी कीर्ति नहीं होगी, तुझे कायर समझ देंगे। लेकिन जो कीर्ति तुझे लड़ने से प्राप्त होगी वो तेरा स्वभाव युक्त कर्म है,
तो वो कर्म करने से तेरी कीर्ति बढ़ेगी। तो धर्म्यम संग्रामम क्या है? ये संग्राम धर्मयुक्त होता है। आजकल के संग्राम कोई धर्मयुक्त नहीं है। भगवान की इच्छा समझने के लिए हमें यहां समझाया जाता है कि धर्म्यम संग्रामम, यानी कि जो कर्तव्य भगवान को अनुरूप है या भगवान की इच्छा के अनुसार है या भगवान के साथ जुड़ावा कराने वाला है, भगवान के साथ जुड़ाने कराने वाला जो कर्तव्य है, चाहे लड़ने के क्यों ना हो, तो वो धर्म संग्राम के अलावा है। यदि जो भगवान के साथ जुड़ावा कराने वाला कर्म करने में जो कोई सहयोग नहीं देता, वो पाप का भागी होता है। रण छोड़ने के भागने की बात ही कहां, ये तो पाप चढ़ेगा। यानी कि दूसरों के हित के लिए यदि अर्जुन कायर बनकर लड़ता नहीं है तो कीर्ति तो पाएगा ही नहीं, बल्कि ये अधर्म कहलाएगा, यानी कि पाप का भागी होगा, क्योंकि ये कर्तव्य भगवान के साथ जुड़ावा कराने वाला नहीं होगा। तब भगवान उसे कहते हैं, कि तेरे शत्रु तुझे कायर समझकर इतने कड़वे वचन कहेंगे और तेरी सारी जो शक्तिमत्ता जो है, तेरी आज तक प्राप्त की हुई सारी कीर्ति जो है, उसका सत्यानाश कर देंगे। तो तेरे लिए और दुख तो क्या होगा? और यदि देखें कि हतो वा प्राप्सि स्वर्गम, जित्वा वा मोक्ष से मही तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहे कुंती पुत्र, यदि तो संग्राम में मर जाता है तो स्वर्ग को आसानी से प्राप्त होगा, क्योंकि ये तेरा कर्मयुद्ध है, और यदि तू जीतेगा तो सारी पृथ्वी को भोगेगा, इसीलिए तुझे निश्चयात्मक भाव रखना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। किस पर निश्चयात्मक? भगवान के साथ योग कराने वाला कर्तव्य पर निश्चयात्मक भाव ही हमें करना चाहिए, उसी प्रकार का ही कर्म करना चाहिए। और ऐसे निश्चय में लाभ और हानि की चिंता नहीं होनी चाहिए। सुखे दुखे समौ कृत्वा लाभा लाभौ जया जय तस्माद युद्धाय ततो युद्धाय युज्यस्वम नैवम पापम अवाप्स्यसि। ऐसे कर्तव्य में हम लाभ और गैर लाभ, जय और पराजय दोनों विरोधाभासी हैं, क्योंकि ये दोनों भौतिक हैं, फिर भी ये भगवान का आदेश के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार का होने के कारण उसे पाप ग्रसित नहीं करेंगे, ये कार्य पाप पूर्ण नहीं बनेगा। नहीं तो दूसरों के हित में सिर्फ भौतिकता का कर्तव्य रहता है, भगवान की प्रीति प्राप्त नहीं कराता, भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं होता, तो वो धर्म कर्तव्य नहीं कहलाता, तो वो पाप देता है। जब लाभ और गैर लाभ की चिंता बिना हम भगवान की इच्छा के अनुसार का कर्तव्य करें, यानी कि भगवान की इच्छा जानकर उनमें निमित्त बनने के लिए जो कर्तव्य करें, निमित्त कौन होता है हाँ? तो उसकी व्याख्या देखें, निमित्त क्या चीज है। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री प्रभुपाद जी भगवान का ये जो तरीका है पाप न पाने का, वो स्वयं अपने उदाहरण के बताते हैं कि न माम कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति यो माम अभिजानाति कर्म वीर अपि न बध्यते। कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं जो मुझे छूता, यानी कि कर्म फल की जो जो बंधन की बातें हैं वो मुझे छूती नहीं, क्योंकि मैं कर्म फल में आसक्त नहीं हूं। इस तरह मुझे कर्म करते हुए जानता है वो कर्म फल से बंधेगा नहीं, उसी तरह कर्म करना चाहिए। ज्यादातर हम सारे सृष्टि में जो जो कर्तव्य हो रहे हैं उसमें अज्ञानता से अपने आप को निमित्त न समझ करके हम कर्म का हेतु समझ रहे हैं, अपने को कारण समझ रहे हैं, इसलिए परेशानी प्राप्त होती है। आप देखोगे भगवान स्वयं आत्माराम होते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता न च तस्य कारणांतरम च विद्यते, श्वेता शूद्र उपनिषद में भी कहा है उनका न तो कोई होने का कारण है न उसको कोई करने का कारण, इसीलिए इनके बराबरी करने वाला कोई होता ही नहीं या उसे अधिक कोई व्यक्तित्व होता ही नहीं। उनकी शक्तियां बहुत विविध प्रकार की है, वो भगवान के ऐसे स्वभाव के अनुरूप वो सारे कर्तव्य अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेती है, जो ज्ञान बल क्रिया इत्यादि में ये सारी शक्ति प्रकट होती है। तो जब भगवान को कुछ करना नहीं होता और ये सारे देवता हैं इनको कुछ करना होता है, जो देवता भक्त के रूप में है वो भगवान की इच्छा के अनुसार कर्तव्य करते हैं, यानी कि भगवान मूल है, उनके द्वारा ही सारा प्रकट हुआ है, इनकी इच्छा के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मूल कारण है, मूल कारण है, लेकिन देवताओं निमित्त बनते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो स्वर्ग के देवता हैं ये सारे उनके सेवक हैं, जो मालिक होता है वो मालिक की स्थिति ऊंचे प्रकार के सुख का अनुभव करता है, वो अपने नौकर चाकर जैसे कार्य करके जैसा सुख का अनुभव करते हैं उनकी तुलना में वो ज्यादा सुख अनुभव करता है। तो ये नौकर चाकरों का सुख करने के लिए ऐसा कर्तव्य क्यों करेगा, तो उन लोगों की पास करवाता है, सही ना। तो इसी प्रकार भगवान सारे सृष्टि के कर्ता होने के मूल कारण होने के बावजूद भी उनको किसी भी प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया छूती नहीं। सही, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अन्नाद भवंती भूतानी परजन्यात अन्न संभव, एक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो अन्न होता है वो वर्षा से आती है, तो क्या वर्षा मूल कारण है अन्न पैदा करने का? वर्षा मूल कारण है अन्न पैदा करने का, हां वर्षा बिना अन्न पैदा ही नहीं होता, लेकिन वर्षा कैसे पैदा होती? यज्ञात भवती परजन्य, सीधा बता दें यज्ञात भवती परजन्य। तो इसी तरह वैदिक स्मृति ये सत्य को प्रकट करती है कि निमित्त मात्रम एवासौ सृज्यानाम स्वर्ग कर्मणि प्रधान कर्तानि भूता यतो वै श्रिय सत्य। इसका अर्थ ये है कि भौतिक प्रकृति में जो जो पैदा हुआ है उसमें भगवान प्रधान कारण है, जबकि प्रकृति वो तुरंत कारण मात्र बनती है, कारण मात्र बनती है। यानी कि सर्ग कुछ और होता है, विसर्ग कुछ और होता है। सर्ग में मुख्यतः प्रधान कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार होता है, और ये इच्छा को वहन करने के लिए प्रकृति अधिष्ठात्री उनकी इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजन, इच्छानुरूप भगवान की इच्छा के अनुसार जो तात्कालिक का प्रतिनिधि मात्र का मुख्य कारण नहीं लेकिन प्रतिनिधि मात्र का तात्कालिक रूप से हमें अपने नजर में आ सकता है वो, तो उसे निमित्त कहते हैं। तब भगवान अर्जुन को इस ढंग का सिखाते हैं, इसीलिए तस्माद उत्तिष्ठ यशो लपस्व जित्वा शत्रु भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मयै वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। इसीलिए अर्जुन तो उठ लड़ने के लिए तैयार हो जा और सारा यश प्राप्त कर, सारे शत्रुओं को तो जीत और समृद्ध राज्य का उपभोग कर, ये सारे व्यक्ति यहां जो उपस्थित हैं आप पांच के बिना सब मेरी ही व्यवस्था में इन लोगों को मारे गए, मारे डाले हैं, इसीलिए वो सभ्य साची तो सिर्फ निमित्त मात्र ही बन सकता है, तो कारण नहीं बनेगा, कारण भगवान। तो भगवान का प्रतिनिधि बनकर भक्ति कर सकते हैं, भगवान के कार्य में निमित्त बनना हरेक भक्त का मूल भक्ति करने का आदि कारण बता दें, कारण निमित्त बनना। आप देखोगे भगवान श्री कृष्ण अने उन्होंने जो लीला की वो लीला कितनी गुड रहस्य वाली है। इन इन भक्तों ने भगवान की इच्छा के अनुसार जो जो योगदान दिया, जो जो पात्र निभाए, इन सारों भगवान की इच्छा ही तो नहीं थी। किसी ने अपनी स्वतंत्र बुद्धि से भगवान के साथ चेष्टा करने की कोई या क्रिया या लीला करने की कोई बात नहीं। जो स्वतंत्र बुद्धि से दखलगिरी करते हैं भगवान उनको हटा देते हैं। उसी तरह आप देखोगे श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आदि कारण उन्होंने अपने विशुद्ध भक्तों को निमित्त बनाया और कृष्ण भावना आंदोलन फैला, भक्तों को निमित्त बनाया। इसमें चार मुख्य मुक्ति के विषय के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य को निमित्त बनाकर मुक्ति की सारी व्यवस्था, उनके पीछे जो समझ है वो उनके आचार्य बने। भक्ति में सारे रस तत्व इत्यादि समझाने के लिए रूप गोस्वामी को निमित्त बनाया। भगवान के नाम की महत्ता के लिए हरिदास ठाकुर को निमित्त बनाया और रामानंद राय को भगवान की अंतरंग लीलाओं के आचार्य बनाया। स्वयं ने कुछ उपदेश नहीं दिया, यदि दिया हो तो सिर्फ शिक्षास्त्र। लेकिन सारी जनता अब जनताओं के हित के लिए इन चार के माध्यम से सारा हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की। इसी तरह श्री प्रभुपाद ने भी इतनी बड़ी अपुक्त अवस्था 17 साल की उम्र में उनके शिष्यों को ही तो निमित्त बनाया। चाहे वो जानते थे नहीं जानते, लेकिन निमित्त बनने के लिए तैयार। उसमें जय होगा या अपयश प्राप्त होगा किसी की परवाह नहीं की। तो ये विशुद्ध भक्ति का प्रचार इस ढंग से होता है, बिना निमित्त बिना बने। जो निमित्त बनता है उसमें अहंकार नहीं होता। जहां अहंकार तत्व आ जाता है तो आसुरी भाव पैदा होता है। अहंकार से आसुरी तो भगवान को वो मंजूर नहीं। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारक प्रवर्तन। इसी तरह कृष्ण भगवान की शक्ति निमित्त बनने से ही प्राप्त होती है। हम मूल नहीं, अहंकार कैसे है? देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने क्या किया? सेवा की कुछ करके बताओ। हम कैसे करके बताए? निमित्त बनना है तो ऐसी चुनौती की आवश्यकता क्या है? कोई करके बताता है लेकिन उसके पीछे अटैचमेंट की तरह। आसक्ति कितनी रहती है, जबरदस्ती से उसे सारी जिंदगी ऐसी रगड़ में आती है कि यहां संभालो तो वहां टूटे, वहां संभालो तो यहां टूटे। सारी जिंदगी तोड़ जोड़ में कभी ये निमित्त नहीं।
श्री प्रभुपाद जी ने सारी संस्था जितना किया निमित्त बनकर ही किया है। अब उनको यश तब मिला है निमित्त मात्र, और ऐसा कार्य अद्भुत कार्य न भूतो न भविष्य। जब कहते हैं तो कितनी विशुद्ध भक्ति का उदाहरण बन गई। तो ऐसे महाजनों के चरणानुगामी होना, महाजनों ये न गतस्य पंथा, उसको ही भक्ति का रहस्य प्राप्त होता है, धर्म का रहस्य प्राप्त होता है, और वो स्वेच्छा से निमित्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारे प्रलोभन से बचना चाहता है, बहुत सारे प्रलोभन आ जाएंगे, सत्ताधीश ये हूं मैं वो हूं, चेतन महाप्रभु कहते हैं हम कुछ नहीं। सारी प्राथमिक अवस्था वहां से हम बता ही देते हैं, अमानी न मानते कीर्तन सदा आदि, जो निमित्त बनता है उसमें ये सारे सद्गुण होने चाहिए। तो किसी को कोई प्रश्न है? अहंकार तोड़ने के लिए गुरु की जिम्मेदारी, यदि गुरु अहंकार का बुद्ध फोड़ेगा नहीं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी ताकत थी, जो ऐसी नजर से देखते हैं तो भक्तों के हृदय में सीधी उतर जाती, और कुछ भी कहें तो उसे पहले वो समझ जाता है, ऐसा अनुभव है। कोई कहता है कि क्या मैंने ये किया, मैंने किया वो किया, मैंने 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 कहेंगे कहा, मैंने किया तो तेरा होगा। तुमने किया है तो तेरा होगा, लेकिन सारा उधारी का धंधा है। जो जो व्यक्ति उधार लेकर कुछ करता है तो उधारी पहले चुकाने की बात होनी चाहिए। हमारे में कुछ भी करने की शक्ति कहां से है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। कर्म अपने आप नहीं होता है, कर्म की शक्ति ब्रह्म से पैदा होती है। यदि ब्रह्म से उधार लेनी पड़ती है, ब्रह्म अक्षर भगवान का व्यक्तित्व है,
तो वो मूल कारण वो होते हैं, तो मूल कारण को हम कोई श्रेय नहीं देना चाहते, सारा श्रेय अपने आप ले लेना चाहते। मैंने किया, बकरी भी मैं करती है और वो भी मैं करता, फर्क क्या? मिली भगत है क्या? शायद ऐसे अहंकार तो गुरु समझते हैं कि ये काम में आएगा, कुछ और सेवा हो पाएगी, चलो आवश्यक से, लेकिन कब तक? किसी को चोरी करने का की कला है और समझदार में मेरा जैसा एक्सपर्ट चोर कोई नहीं, अहंकार है। तो यमुनाचार्य जैसे मिल जाने चाहिए कि भाई हाँ चोरी कर चोरी कर, ला तो ला इधर ला, बड़ा मंदिर बना देंगे, बाद में उनको साथ भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा अनुकरण कौन कर सकता है? ऐसे अनुकरण करने की क्या आवश्यकता है? बेहतर है कि हम कुछ नहीं है, ऐसी भावना लाने के लिए हमें ये सब कितना हम किसके लिए त्याग कर सकते हैं, कितने किसके लिए हम जो हमने ये उपलब्धि प्राप्त की है वो उसकी सेवा सबके लिए करनी चाहिए। मैं बड़ा ज्ञानी हूं लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं करता, तो बांटना चाहिए। नहीं बांटेगा तो कोई फायदा नहीं, ज्ञान सड़ जाएगा, और जब बांटता है तो और ज्ञान बढ़ता है। तो क्या है, इसका दिमाग फूलेगा कि फूटेगा? कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न महानी न कीर्तन। कभी कभी ऐसा दिखावा होता है, लेकिन अपवाद तो सब जगह होता है। श्री प्रभुपाद जी की विनम्रता का ये उदाहरण है। जिन्होंने पर्सनली ये विटनेस की थी वो तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, अमेरिकन है। वो बंगाल के हैं और जब मैट्रिक की परीक्षा पास करते थे तो वो बागुशा गौड़िया मठ में रहते थे, तो वहां के संचालक एक बार इनको बाहर जाना पड़ा, तो उस समय के बीच में श्री प्रभुपाद उस समय सन्यासी भी नहीं थे, अभय बाबू ही कहलाते थे, तो इनको कहा कि क्या आप संभालोगे थोड़े दिन, मैं आता। तो उस दरमियान ये तो मैट्रिक की परीक्षा के लिए तैयारी करते थे, कहीं
भक्त लोग भी थे और इतना बड़ा मंदिर नहीं, पर फिर भी कम से कम 20-25 भक्त होंगे उस समय। सबके लिए रसोई बनाने वाला एक भोक्ता नामक डिबोटी था वहां, वो काफी तगड़ा, पर उस समय राशन के समय दाल चावल भी लाइन में खड़े रहकर लेने पड़ते थे, और पतली दाल होती थी, चावल तो वो खाते ही थे बंगाली, जितने सब्जियां थोड़ी होती, बहुत सीधा साधा प्रसाद, लेकिन महाप्रसाद तो बहुत बढ़िया होता है, तो उसमें भी पक्षपात ही। जब भोक्ता के मैं ही पकाता हूं तो मैं ही अधिकारी हूं, तो उसको थोड़ा ऐसा अहंकार था, वो किसी को देता नहीं, सभी कहते हैं कि तो महाप्रसाद दे दो भाई थोड़ा थोड़ा, कितना जो आए वो कर ले, हम नहीं देते। श्री प्रभुपाद अभय बाबू के पास फरियाद गई, तो श्री प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि मेरे में कुछ गलती है, स्वयं मेरे में कुछ गलती है, मैं भोक्ता के लिए आदर्श नहीं बन रहा, तो चलो मैं उपवास कर देता हूं। ये कान बात भोक्ता के कान में पड़ गई, वो तुरंत आया, माफी मांगी और सबको महाप्रसाद बांटना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं वो दोष अपने मत्थे पर ले लिया। गुरु पापों का बोझा उठाता है भक्तों, यदि कोई ठीक ढंग का उसका चेला है तो उसको सीधा भी कर सकता है, नहीं तो दूसरों का बोझा कैसे उठाएगा, ये अहंकार का ही बोझा उठा रहा है इतना, तो दूसरे का बोझा कैसे उठा पाएगा, बेहतर अहंकार छोड़ तो दूसरे का बोझा उठा पाएगा, यानी कि गुरु का प्रतिनिधि बनना चाहिए। सही, तो श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे विनम्र कहा, बहुत सारे उदाहरण, कोई भी आदर्श व्यक्ति हो तो आदर्शता में विनम्रता न हो तो आदर्शता का नहीं काम किया। ठीक उदाहरण, और कोई प्रश्न? जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।